नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासे चित्त भावाय भावाय शरण भावांतर।
इसमें गाथा की टीका चल रही है, द्रव्य इंद्रियों और भाव इंद्रियों को जीतना कैसे होता है उसकी बात हुई और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ की बात करते हैं। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती हैं, ऐसी भावेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। भाव इंद्रिय माने ज्ञान का जो छह उपशम है, उनसे जो स्पर्श आदि से युक्त पदार्थ ज्ञान के जे बनते हैं, उनमें भी इसकी कदाचित एकत्व बुद्धि होती है, तो उनसे भी भिन्न अपने आत्मा को जानना वो इंद्रियों के विषयों को जीतना हुआ। इंद्रियों के विषयों को जीतना माने उनमें कोई तोड़फोड़ करना, उनमें कोई डिस्टर्बेंस करना नहीं है, उनके प्रति लुभाना नहीं, ये भी नहीं है, बल्कि ये भी मैं नहीं हूं, इतना ही यहां जीतने का अर्थ है। क्योंकि वो लुभाना और नहीं लुभाने की बात तो भूमिका अनुसार होगी, मिथ्या त्रिगुण स्थान में जैसी होती वैसी वहां होगी, और सम्मय दृष्टि के भी जितनी होती है ना, और अनुवृत्ति के भी होती है ना, जितनी जितनी जिस मर्यादा है पांच इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षित होने की। लुभाना जो शब्द है वो तो लोभ कषाय का सूचक है ना, और लोभ कषाय दस गुण स्थान तक रहती है, तो भूमिका के अनुसार लुभाना की बात नहीं है। उनको पांच इंद्रियों के विषय के इकट्ठा करने का भाव भी हो सकता है, भोगने का भाव भी हो सकता है, उससे जितेंद्रिय जिन्न पने का कोई निषेध नहीं, आगे होगा आगे की गाथाओं में और आगे की भूमिका में। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो उनसे भी अपने को पृथक जानना, उनसे मेरा कोई प्रकार का संबंध नहीं है, उनसे मेरा सुख दुख का भी संबंध नहीं है, स्वस्वामी संबंध नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, कर्ता कर्म नहीं, ये सारे संबंधों का जो उनसे इनकार है वो यहाँ पर इंद्रियों के विषयों को जीतना है। सब में परत्व बुद्धि, और उनसे भिन्न जो भगवान आत्मा है उसमें एकत्व बुद्धि, वो उसका इनाम यहाँ इंद्रियों को जीतना कहा है। देवेंद्री और इंद्रिय भावेंद्री कहके, देवेंद्री माने शरीर और भावेंद्री कहकर ज्ञान का छेवसम, और द्रविंद्रियों के माध्यम से भावेंद्री जिनको जानता है उन पदार्थों तक की बात करी। क्योंकि जो पदार्थ हमारे ज्ञान के गेय नहीं बनते हैं उसमें अमत्व अपनत्व एकत्व कर्तृत्व तो होता ही नहीं है, इसलिए उनको बस छोड़ दिया। वास्तव में तो जो बात पहले कही थी शरीर से भिन्नता की बात, अथवा कर्म और नोकर्म से भिन्नता की बात 19वीं गाथा में, और उसको ही प्रकार अंतर से 31वीं गाथा में कह दी। अब ये हमको सूक्ष्म लगने लग जाती है और वो हमको स्थूल लगती है, सिर्फ इस कारण से कि शरीर भिन्न है ये बात हम पहले से सुनते आए, इसलिए वो हमको स्थूल लगती है, और ये इंद्रियों और इंद्रियों के विषय और भाव इंद्रिय ज्ञान का छह उपशम भी भिन्न है, ये सूक्ष्म लगता है। वो तो उसी विषय को बढ़ा रहे, वहां भी उन्होंने कर्म और नो कर्म कह के, तो कर्म के भेद द्रव्य कर्म और भाव कर्म कह के, और भाव कर्म को मोहराग देश है, वहां तक तो वहां बात आई गई थी, क्यों अब यहां एक छह उपशम ज्ञान और बढ़ गया है, छह उपशम भाव ज्ञान कहने, आप सुनिए ना है? ज्ञान ही बढ़ा है खासतौर तो इस तरीके से प्रकारांतर से उसी बात को कहा गया, नहीं कहा बोलो। हाँ बस अब आगे स्वयंद्रियों के ऊपर इस प्रकार, यह ना पेज नंबर 63 पर ऊपर की पंक्ति का अंतिम वाक्य, इस प्रकार जो द्रव्येन्द्रियों भावेन्द्रियों और इंद्रियों के विषय भूत पदार्थों को जीत कर गे गायक शंकर नामक दोष आता था, सो सब दूर होने से एकत्व में तंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जितेन्द्रिय जिन हैं। तो क्या कहते हैं इस प्रकार जो जो कहके उन्होंने कोष्टक में मुनि क्यों लिखा, तो मूल गाथा में है ना निच्छदा साहू, इसके लिए उन्होंने मुनि कर दिया। जबकि अमृतचंद्र ने तो नहीं ऐसा कुछ किया, जब अपने यहाँ पर द्रव्येन्द्रियों से पृथक जाना इतनी बात है, तो श्रद्धा की अपेक्षा है मेरे ख्याल से, वो है नहीं अपने प्राण पर जैसे उन्होंने देखा नहीं है गुणस्थान परपाटी से यहाँ कौन सा गुणस्थान पकड़ा है, कल देखूंगा फिर बताऊंगा, वैसे चौथे गुणस्थान पकड़ा होगा फिर भी मैं पक्का नहीं कहता अभी, वो इस मुनि शब्द की वजह से निकल पाया मुझे बात है ना, इसलिए मुनि शब्द का मतलब कोई विशेष अर्थ है नहीं। तीनों विषय पदार्थों को जीत कर, अब जीतने का अर्थ जैसा बताया वो समझना, अब क्या किया कि गे गायक शंकर नामक दोष आता था, सो सब दूर होने से वो गे गायक शंकर दोष दूर हुआ। आखिर निष्कर्ष क्या क्या निकाला कि जो अब जो गे गायक शंकर कह के इसका थोड़ा और एरिया बड़ा कर दिया, क्योंकि इसमें तो बेबी गे आ गए नहीं है, लेकिन तो अकेला ऐसा ही लो ना कि जो हमारे ज्ञान के गे बनते हैं बेई, तो वो गेयों में और गायक माने अपना जानने वाला आत्मा, उनके शंकर माने दोनों में एकत्व मानना, ये हुआ दोष। उन दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया तो गे गायक शंकर दोष का हो गया परिहार। गे गायक शंकर दोष के परिहार होने से एकत्व में तंकु, दो शब्द दिया आत्मा के लिए, एकत्व में तंकुत्पीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न अपने आत्मा के दो विशेषण, ऐसे अपने आत्मा का, अपने आत्मा के दो विशेषण दिए इन्होंने। एक तो ये कि ज्ञान स्वभाव के द्वारा हमने आत्मा को पर से भिन्न किया, जो जाने देखे सो आत्मा, जानना है स्वभाव जिसका सो आत्मा, वो जाने देखे इसमें भी पर्याय आ जाती, क्षेत्र संभाव आ जाएगा ना, क्षेत्र संभाव इंद्री से तो भिन्न कहा, तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ फिर ध्यान से सुनना, जानना है स्वभाव जिसका वो आत्मा, जाने देखे वो नहीं, तो क्षेत्र संभाव से भी भिन्न करना है ना, ज्ञान है स्वभाव जिसका ऐसा आत्मा से, तो ज्ञान स्वभाव से अधिक जाने, अधिक जाने माने ये इसकी भिन्नता की पहचान हुई। अपन कहते हैं ना कि और तो सब दोनों में बराबर है पर इसमें ये बात विशेषता है, ऐसे बाकी शब्द में तो और तो मैंने गे की दृष्टि से दोनों बराबर हैं, और भगवान आत्मा में ज्ञान स्वभाव ज्यादा है, तो ऐसा है अधिक जाने, अधिक जाने मतलब समझिए ना, तो इससे उसकी भिन्नता और महानता विशिष्टता जुदाई के सिद्ध हो गई। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि ज्ञान स्वभाव के द्वारा पर से भिन्न जिसको जाना, और दूसरा का तंकोत्कीर्ण, एकत्व में तंकोत्कीर्ण, ये पर जो था ना इंद्रिय द्रविंद्री भाविंद्र इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, इनको आत्मा में मिलाते थे तो आत्मा का एकत्व खंडित हो जाता था। यहां वो ही लेना, यहां वो गुण भेद द्वारा वगैरह नहीं लेना, एकत्व में तंकोत्कीर्ण माने ऐसा नहीं कि भेद भेद कर दिया, वो ये कहते हैं कि इनमें इन बाह्य चीजों से मिलान से उसका एकत्व जो है वो खंडित हो जाता था। तंकोत्कीर्ण शब्द तंकोत्कीर्ण का अर्थ समझते हैं क्या है, टांकी से उकेरा हुआ, टांकी से उकेरा हुआ का मतलब क्या, एक तो इस अर्थ में होता है कि जैसे कि अपन लिखते हैं ना, तो एक तो अपनी उंगली से पानी में लिखें, यहां लिखते जाएंगे और वहां मिटता जाएगा। फिर अपन खड़िया से पाती पे लिखें, जानते तुम नए लोग खड़िया पाती अपना जमाने में होती नहीं होगी। फिर बत्ती से स्लेट पर लिखें, फिर पेन से कागज पर लिखें, तो जो अधिक अधिक ज्यादा स्थायी होता गया ना, फिर हमको लगता कि नहीं नहीं ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो अपन कहते हैं कि टांकी से पत्थर पर उकेर दो, जिन्हें अपन शिलालेख कहते हैं। अभी आज 2000 वर्ष के भी है मौजूद ना, जमीन में टूट गए फूट गए, यदि कागज से पर लिखे होते तो सब नष्ट हो जाते ना। तो उसे बोलते टंकोत्कीर्ण, माने टांकी से उकेरे हुए। एक तो ये अर्थ होता है टंक, माने अधिकतम स्थायी, एक तो ये अर्थ होता है। लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है, यहाँ टंकोत्कीर्ण में भगवान की मूर्ति है ना, वो टंकोत्कीर्ण मानी जाती है। काहे की पत्थर की, ये जो सोने चांदी की बनाते हैं, पीतल की बनाते हैं, ये टंकोत्कीर्ण नहीं है। क्या ये गला के बनाई जाती हैं, तो टंकोत्कीर्ण नहीं है। और वो टांकी से उकेर उकेर के बनाई जाती है ना, तो जो भी सब विकार था वो निकाल के अलग कर दिया। ऐसे ही भगवान आत्मा को टांकी से उकेर के, ये टंकोत्कीर्ण माने इसमें द्रविंद्री को अलग किया, भावेंद्री को अलग किया, इंद्री के विषयभूत पदार्थ अलग किए, और फिर अब टांकी से उकेर कर अकेला त्रिकाली तो भगवान आत्मा रहने दिया। ऐसा वो टंकोत्कीर्ण एक तो अब वो रह गया, वो एक तो वो एक रह गया, जितना विकार था वो टांकी से उकेर उकेर के अलग कर दिया। टंकोत्कीर्ण एकत्व में टंकोत्कीर्ण, अब वो बिल्कुल एक। अब कहते हैं कि वैसे भगवान की मूर्ति बन गई ना, अब इसमें बिल्कुल टांकी नहीं लगाना। अब तुमने टांकी लगाई तो मूर्ति खंडित होने वाली है, और अपने आप प्रतिष्ठा हो जाती है ना भगवान की, तो उसके बाद तो टांकी नहीं लगती क्या? नहीं, टांकी लगती ही तो फिर उसके द्वारा प्रतिष्ठा करानी पड़े। अथवा समझ लीजिए वो प्रतिष्ठा के बाद में, जैसे टांकी लगाना ऐसा काम है, फिर हम चेतन में टांकी लगा रहे हो, समझिए ना। और अभी तो पहले तो पत्थर में टांकी लगती थी, और अब चेतन में टांकी लगाने जैसी बात हो गई। माने अब ऐसा है कि हमने पर से भिन्न, राग से भिन्न, प्रकार से भिन्न, प्रजा से भिन्न कर दिया, अब और भी टांकी से उकेरने की कोशिश करोगे तो अब तो फिर तुम दो चार गुण निकाल के फेंक दोगे, तो आत्मा एक तो खंडित हो जाएगा कि नहीं, अब मूल पे कुठाराघात होने लगेगा। एक एकत्व माने टंकोत्कीर्ण करने के बाद सिर्फ वो ही बचा, अब कुछ पर रहा ही नहीं जिसे टांकी से उकेर के फेंकना हो। तो एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव से अधिक ऐसा भगवान आत्मा, आत्मा का अनुभव करते हैं, उसे सीधा ज्ञान के द्वारा जानते हैं। बे निश्चय से जितेंद्री जिन हैं, अनुभव करते हैं गए तो शास्त्र से नहीं जानते हैं, गुरु मुख से नहीं जानते हैं, और ऐसा प्रत्यक्ष भी नहीं देखते हैं। ये भी लगाना, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो बोलो ना आत्मा का अनुभव होता है। अनुभव शब्द का ये भी अर्थ है, कभी तो अनुभूति का विषय है भाई। जैसे अपन लोग कहते हैं कि देखो भाई, एक आदमी को इष्ट का वियोग हो गया, पुत्र का वियोग हो गया, पति का वियोग हो गया, तब कहते हैं बहुत दुखी है, कि बताओ कहाँ है दुख। कि भैया ये दुख ऐसे देखने की चीज नहीं है, ये तो अनुभव करने की चीज है, महसूस जिसे आप समझे ना, ये तो महसूस करने की चीज है। तब कहते तो उस परिस्थिति में तुम अपने को खड़ा करके देखो तो तुम्हें ख्याल में आएगा। ऐसा और बताता हूँ समझाने के लिए, सुबह से लाइन में खड़े हो गए कोई काम के लिए, और पूरी दोपहर ही अपने माथे के ऊपर से निकल गए, और जब 1 किलो चीनी लेने का अपना नंबर आया, क्यों तो वो कहता चीनी खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया, अब किवाड़ बंद करके भागने की वो कोशिश करे दुकानदार, तो आपको कितना गुस्सा आता है, और फिर आप गालियां मालियां बकने लगते हो, तो कोई आगे उसे उपदेश दे रहे कि गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्या क्या मथुरा जी। तब वो कहे भैया तुम सुबह 8 बजे यहां आगे खड़े हो जाते और 2 बजे तक खड़े रहते क्यों, और फिर बाद में तुम्हारे वो बंद करके चला जाता और फिर तुम हमसे कहते गुस्सा गुस्सा करना अच्छा नहीं होता तो हम मान लेते। माने ये तो अनुभव हमारे इतने गुस्से के लिए तो उपदेश दे रहे हो और तुम उससे नहीं कहते तो वो क्या कर रहा है, क्यों बोलो। ऐसी ऐसी एक एक हर एक परिस्थिति पर आप विचार कर लेना। तो अपन कहते ना कि अनुभव करने की चीज है भैया, ये ऐसी कहने से कि उसमें क्या हो गया, अब हो गया खत्म तो खत्म हो गया होगा, अब कल मिल जाएगा, उसमें क्या है। तुम तो 1 सेकंड में कह रही टाइम खत्म हो गया तो हो गया कम कल मिल जाएगा, क्यों इधर 1 सेकंड में ऐसे कह दिया कि जैसे कुछ कई खास बात उसमें क्या हो गया, बात कर रहा हूं कल मिल जाएगा, अब समय हो गया 5 बज गए। ये कर्मचारी भी क्या करें, सुबह 10 बजे से आगे बैठे 5 बज गए, अब टाइम हो गया बंद कर दिया, बाकी टिकट कल देंगे। लेकिन हम भी तो यहां सर इनको तो तनख्वाह मिलेगी 100 रुपया सुबह से बैठे हैं, हमको तो कुछ नहीं मिलेगा और हम सुबह के खड़े हैं ना। तो प्रेम से बोले शांति, तो किससे बोले शांति को, वो तो बंद करके ताला भाग रहा है। अभी तो हम गाली दे रहे हैं, अभी तो टांग पकड़ के खींचेंगे, जाने नहीं देंगे। प्रेम से बात, प्रेम से बात करना क्या होता तेरे को ही पता। यही मैं बोलता हूँ ऐसा जिसको तुलसीदास जी ने लिखा ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उसका अर्थ यही है कि उन परिस्थितियों में से जब स्वयं गुजरे तो उसे पता पड़ता है कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा किसे कहते हो कैसे आ जाता है। मैं तो अब एक एक बात पर विस्तार करना आपको, हम तो भी उपदेश दे रहे थे ना सब लोग, आगरे बड़े बड़े लोग समझदार लोग बालचंदी पादनी जी जैसे, मैंने जी गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्यों तुम्हारे मजाक नहीं, आपका नाम लेता हूं घबरा नहीं, तो हम कह रहे ना तो ये मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे घर का 2 पैसा जाता और तुम चुप रहते तब हम जानते, और इसलिए तो हमने कह रहे थे कि संस्था का जावे तो जिसको दर्द होगा वो बोलेगा, जिसको दर्द नहीं है वो नहीं बोलता है, इसका मतलब तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारा नहीं बोलना ये पाप है। हम तुमसे कहे तुम क्यों नहीं सब बोले कि क्या बात है, हमें बताई सच्ची बात, और कौन ऐसा करता है, कैसे हम करने देंगे, हम सब आमन अनशन करेंगे वहां बैठ के, कौन ऐसा करता है, तब हम तुम्हें समझते, तुम हमें उपदेश देते हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्यों। एक रेलवे का फाटक खोल दे, गवर्नमेंट रेलवे का फाटक नहीं खोलेगी, यहां नहीं बनाएगी, तो सारा मोहल्ला अनशन करेगा, करते कि नहीं करते। वो गणेश मार्ग पर वो लग गए ना बाद में, आपने नहीं देखे, अपना उस दिन नहीं जा पाया, अपना रथ यात्रा थी वहां से नहीं निकल पाई, तो नहीं निकल पाई मालूम, तो गुडगा जी के मकान के सामने वे खंभे लगा दिए, तो वहां से कोई ट्रक वगैरह नहीं निकल सकता, अपनी गाड़ी नहीं निकल सकती, तो क्यों लगा दिए मैंने कहा, तो उन्होंने बताया सारे मैंने रामचंद्र काशली बादशाह ऐसे बड़े बड़े लोगों ने IAS ऑफिसरों ने जो उनके मकान है आमरण अनशन किया वहां बैठ के, यहां से ट्रक का निकलवाना बंद करवा, क्योंकि हमारे एक्सीडेंट हो गया, किसी को ये हो गया, किसी को ये हो गया, तो इस सड़क पे से ट्रक नहीं निकले, इसके लिए सारे गांव वाले अनशन पर बैठ सकते हैं बड़े बड़े IAS ऑफिसर पादनी जी, उनसे किसी ने नहीं कहा इधर शांति से काम लो, उसमें क्या है, इस रोड से निकले उस रोड से निकलेंगे तो उस रोड में भी जो लोग रहते हैं ना उनके बच्चों के ऊपर से निकलेंगे तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे, नहीं और म्यूनिसपैलिटी ने जाए खंभे गाड़ दिए फटाफट, इतनी सी बात होती ना, इतनी सी तुम 1 इंच जमीन तुम्हारी के ले रहे तुम क्या करते हो। हमारे हम तो उन गुरु जी के चेले हैं ना जो जैन दर्शन अखबार निकालते थे मक्खनलाल जी पादनी जी, तो उसके ऊपर एक श्लोक लिखा रहता था, अभी भी पता लिखा रहता, तो अखबार ने बंद हो गया, क्या उसमें लेते थे कि ना सहनते धर्म प्रभाव का, वो जैनी वो है कि जैन दर्शन पर कोई उसकी बड़ी आपत्ति आ रही हो तो जान की बाजी लगा करके भी रक्षा करें, उसको बर्दाश्त नहीं करें, उन्हें जैनी कहते हैं, ऐसा श्लोक उस पर लिखा रहता था, ना सहनते धर्म प्रभाव का। हमें तुम गुस्सा नहीं करने का उपदेश, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं किया, हमें इस पर गुस्सा आ रहा है, ऐसा ऐसा 1 सेकंड में ऐसा कह दिया, वो आपकी व्यक्तिगत बात, मेरे बाप जी कहा कि व्यक्तिगत बात है, मेरे कहते रहते ना मेरा क्या जा रहा है, नहीं मैं बोलता हूँ आपको, मेरी व्यक्तिगत बात है, बोलो क्यों हिंसा लाल जी, व्यक्तिगत मेरी क्या है, नहीं नहीं मेरा मंत्र समझे ना आपके, आप निबटी, अरे क्या बात करते, इसको वो कहते अनुभव, अनुभव करो। मैंने एक एक उदाहरण दिया, रेल के लाइन पे खड़ा हो, शक्कर की चीनी की दुकान पे खड़ा हो, तो वो उस परिस्थितियों में वो अनुभव, वो फील, ये बात ये कहते हैं क्या कि अनुभव करने का मतलब ये है पूरा जानना नहीं होना उसमें, जब ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करके वो भावावेग में अतीन्द्रिय आनंद की कहीं का आ जाए उसमें, तो उसका नाम अनुभव है। प्रदेश प्रत्यक्ष की बात नहीं है, आप समझे ना, हाँ ससंवेदन अतीन्द्रिय आनंद की कण का माने उसमें जो अपन बोलते हैं ना वो कुछ ना कुछ उसमें सुख दुख हर्ष शोक उसका वेदन होना, वो उसका नाम अनुभव है। अनुभव में क्या शामिल है मतलब समझिए ना, कोरे जानने का नाम नहीं है दीतराग भाव से। बहुत पहले मैंने आपको एक बात सुनाई थी सर, आप सब नए श्रोता हो गए हैं। बहुत दिन पहले ज्ञानोदय नाम का एक अखबार निकलता था, पार्नी जी बहुत समझने की चीज है, ज्ञानोदय नाम का अखबार निकलता था, वो तो आपने देखा हो बनारस से भारतीय ज्ञानपीठ से ज्ञानोदय नाम का अखबार निकलता था, और उसके सबसे पहले फूलचंद जी संपादक थे और एक सितंबर आचार्य से वो थे और महेंद्र कुमार न्यायाचार्य से बाद में, फिर वो बाद में कई रूप बदले, उसमें पहले जैनियों का था, फिर वो सार्वजनिक हो गया, फिर वो कादम्बनी मादम्बनी जैसा हो गया, नवनीत जैसा। तो उसमें मैं उसका डेली का पाठक था उस जमाने में, 1947-1948 में। तो उसमें एक इतना मोटा विशेषांक निकला था उसका, इतना मोटा पादनी, और विशेषांक का क्या विषय था, 21वीं शताब्दी, यानी सन 50 में निकला होगा, सन 50 में निकला होगा वो, माने 50 वर्ष बाद की कल्पना, 21वीं शताब्दी। तो सर क्या था कि 21वीं शताब्दी कैसी होगी, आप कल्पना करिए विज्ञान के जमाने में 50 वर्ष में हम कितनी तरक्कियां कर लेंगी। तो उसमें सब लेख ऐसे ऐसे थे, कोई कहता कि भाई उस वक्त मान लो हवाई आक्रम से ऐसे हवाई आवाज होंगे अमेरिका पहुंच जाएंगे, ऐसे उड़ने लग जाएंगे, आदमी अपने आप बैठ के उड़ जाएगा, यानी यातायात में क्या होगा, डाक के मामले में क्या होगा, मेडिकल साइंस में क्या होगा तरक्की। मैंने 21वीं शताब्दी में मनुष्य कहां पहुंच जाएगा, उसका ऐसा उद्देश्य लिखा था कि सन 2001 का आप कल्पना कीजिए जो भी। तो एक लेख उसमें मैंने पढ़ा था, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, उसका मैं आपको बता रहा हूं कि वहां उसने एक कल्पना की थी कि 21वीं शताब्दी में कोई भी मां बहन बच्चे को अपने पेट से पैदा नहीं करेगी, सब लेबोरेटरी में बच्चे प्राप्त होने लगेंगे, हालांकि अब तो आने वाला है, वैसे लक्षण दिखते नहीं है, तो उसने कल्पना की थी। कोई उसमें तकलीफ है, जैसे बाजार से कुत्ते बिल्ली तो अमेरिका में मिलते ही है, बाजार से खरीद लाते हैं, जैसे अपने बाकायदे बड़े बड़े स्टोर होते हैं वहां कुत्ते बुल्ली पैदा किए जाते हैं और वो अवलाते अपने मन का खरीद लाते हैं, तो बच्चे भी ऐसे खरीद लाएंगे लोग, बच्चे एक नर्सरी होगी ऐसे पेड़ पौधों की होती ना, और नर्सरी में बच्चे के ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे, उनका उद्योग बन जाएगा और हर आदमी अपने मन के बच्चे खरीद लाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो वहां कुछ अपने होते रेडीमेड कपड़े कुर्ता वगैरह ऐसे मिलते सिले सिलाए, तो ऐसे तो कुछ वैसे ही खरीद लाएंगे, और कुछ लोग कहेंगे हम अपने लिए स्पेशल बनवाएंगे अपने नाप का, ऑर्डर देके भी बच्चे बनेंगे। और ऑर्डर देकर कैसे बनेंगे कि हमको डॉक्टर बच्चा चाहिए, हमको इंजीनियर बच्चा चाहिए, हमको सेनापति हो सैनिक बच्चा चाहिए, वीर चाहिए, हमको कलाकार चाहिए। तो जिस टाइप का बच्चा आपको चाहिए उस टाइप का बच्चा लेबोरेटरी से खरीद के लाएंगे, उसमें लिखा था, उसमें लेख में बहुत लंबा चौड़ा था। तो एक जो पति पत्नी थे उनने नक्की किया कि हम अपने मन का एक वैज्ञानिक बच्चा पैदा कर लाएंगे। तो उन्होंने लेबोरेटरी में जाकर के सारी क्वालिटी बताई, तो ऐसा विद्वान होना चाहिए, रूप रंग ऐसा होना चाहिए, कद इतना होना चाहिए, बाल घुंघराले होना चाहिए, सफेद हों के काले हों, आंखें नीली हों, तो सब चीजें उसकी आप लिख के जैसी दोगे वैसे रसायन मिला के आपका बच्चा बना करके आपको दे दिया। अब जब वो जो आदमी था वो बोला कि देखो आदमी की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा जो है वो इसकी दुर्वासना है, पैसेंस है, काम विकार है, इससे आदमी बहुत परेशान रहता है और उससे वो अपने काम में पूरा मन लगा के नहीं कर सकता है। अब वही तो पढ़ने लिखने का टाइम होता है और वही फिर विकृतियां खड़ी होती हैं और वो बहुत तकलीफें होती हैं और कॉलेजों में गुंडागर्दी होने लगती है। इसलिए मेरे बच्चे में वो सेक्स डेवलपमेंट हो ऐसे कोई तत्व नहीं डाले जाए, वो आदमी ने ऐसा कहा। तो उसकी पत्नी ने बहुत मना किया कि तुम ऐसा मत करो क्या, लेकिन वो आदमी नहीं माना, वो जिद पे आ गया कि मैं वो जो 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 सेक्स है उसका कोई रसायन उसमें नहीं डाला जाए, मैंने सेक्स नाम की भावना उसमें होनी नहीं चाहिए, काम वासना उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए। तो ऐसा बच्चा, अब वो बच्चा 25 वर्ष का हो गया, बहुत खूबसूरत कामदेव जैसा। अब उस पर एक लड़की मोहित हो गई और उसमें तो वो सेक्स नाम के तत्व थे ही नहीं
क्या।
तो उसकी माँ ने उस लड़की को बहुत समझा, लड़के की माँ ने, कि भाई तुम इस पर मोहित मत हो, इससे तेरे को कोई साथ मिलने वाला नहीं है, ये ऐसा ऐसा लड़का है, लेकिन वो तो कहते हैं प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है, तो उसे तो हो गया साहब। तो उसने क्या लिखा था कि वो बहुत 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 रात की बातें उससे करे लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो। तो उसमें जो अंतिम बिंदु था मैं आपको बताता हूँ, कि वो लड़की एकदम उससे बोली भावुकता में बातें करते करते कि तुम मेरी आंखों में देखो क्या है, तुम्हें क्या दिखता है, समझे ना, आंखों में देखो माने इन आंखों में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है, तुम देखो तो मेरी आंखों में आंखें डाल करके, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम ऐसे नो रिएक्शन ये क्या बात है। तो उसने कहा जरूर देखता हूं। तो उसने लेकर के वो एक कांच का आता ना ऐसा देख कर चश्मा से देखते ना आंख को ऐसा करके और वो कांच का वो लगाकर डॉक्टर लोग देखते ना जैसे और बहुत टॉर्च लगा के अच्छी तरह से उसने आंखें देखी और उसने एक कमेंट किया, उसने कहा कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी स्तनधारी प्राणियों की होती हैं। मतलब ये जो विज्ञान है ना इसमें अलग तरह के प्राणियों का बंटवारा होता है, तो ये मनुष्य है, ये गाय भैंस है, जब स्तनधारी प्राणी माने जाते हैं, स्त्री नहीं, स्तनधारी माने स्त्री नहीं पुरुष भी, समझ गया ना। तो वैसी उनकी आंखें अलग टाइप की होती हैं और जो स्तनधारी नहीं होते उनकी अलग होती हैं। तो उसने कह दिया कि बिल्कुल वैज्ञानिक था ना, तो एकदम वो बेहोश होकर गिर गई कि मैं तो प्रेम को देखने का कहता था, वो ये तो एक टेक्निकल आंख में क्या खराबी है, डॉक्टर की नजर से आंख देखने लग गया तो वो बेहोश हो गई और उस लड़के की माँ दहाड़ दहाड़ के रोने चिल्लाने लगी कि मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन ऐसा संकट खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये तो मानते ही नहीं है, ये तो किसी की सुनते ही नहीं है, अब इन्होंने मेरी आफत खड़ी कर दी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक कोरा ज्ञान जिस अंदर में जिसमें भावना हो ही नहीं उसका नाम अनुभूति नहीं है, समझो ना, ऐसा कोरा वो अनुभूति तो उसका नाम है कि जिसके साथ में अनंत गुणों में अल्लाद पैदा हो। भगवान दादा टोडामल जी ने लिखा है और प्रवेर रत्न का माला में श्लोक आता है ना कि सुखम आह्लाद नकारम मेयम ज्ञानम मेय रूपनम, है ना, प्रेरत्नमाला वाले कोई नहीं जानते, किसी को याद नहीं है, नहीं पढ़ा प्रेम रत्नमाला, किन्ने पढ़ी है, तुमने नहीं पढ़ी मन गोवन, तुम्हें श्लोक नहीं है याद, ज्ञानम मेह नाकारम सुखम आह्लाद नाकारम ज्ञानम मेह रूपनम, ऐसा है ना, बहुत श्लोक है। कैसे पढ़ते हैं आजकल के लोग, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, मैंने इसको इनको याद भी नहीं आती है कि जो उसमें कहीं है कुछ है, इतना याद आ जाए ना, चलो इतना तो चलो यही बात है इतना तो याद आ गया कि श्लोक है उसमें। तो उसमें बाद में ऐसा लिखा है कि ये जो सब जो चीजें इसका नाम अनुभव है, ये गुरुदेव बोलते हैं ना अनंत गुणों अनुभव कुछ गुण की पर्याय है, तो अनंत गुणों की पर्याय है, उसमें वीर गुण भी है, उसमें आनंद गुण भी है, उसमें ज्ञान गुण भी है, उसमें हाँ वो उल्लासाना है ना। देखो क्या लिखा, अन्य आत्मा का अनुभव करते हैं बेनिश्चय से जितेंद्रिय जिन है ना, ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक से भिन्न है, तो अपना अर्थ कर ही चुके। कैसा है वह ज्ञान स्वरूप विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ माने उन्हें जानता हुआ, देखो ऊपर तिरता हुआ माने उन्हें जानता हुआ भी उन रूप न होता हुआ, इसका नाम तिरना है। प्रत्यक्ष उद्योतपन एक कोष्ठक सब सोनगढ़ के लगाए हुए हैं और सोनगढ़ के लगाए हुए गुरुदेव के लगाए हुए हैं, एक एक शब्द पाटनी जी को तो मालूम है कि गुरुदेव के सामने पास हुआ है, कहीं ऐसा कोष्ठक लगाना कि नहीं लगाना, क्यों तो पर को नहीं जानना तो नहीं लगा उसने, जानता हुआ बस उस रूप नहीं होता हुआ लिखा कि नहीं लिखा, वही अनुभव की बात है कि नहीं, जानने का निषेध तो नहीं है। हुआ भी उत्पन्न रूप न होता हुआ प्रत्यक्ष उद्योतपने से, ये अनुभव के काल की बात है, बात नहीं, सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर सुता सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। इस ज्ञान स्वभाव में जो अपनेपन का अनुभव उसका नाम आत्मानुभूति है और उसका नाम जितेंद्री जिन है, उसका नाम गे गाय शंकर दोष का परिहार है और उसका नाम एक नंबर की निश्चय स्थिति भगवान की क्या प्रकाशमान मतलब एकदम प्रकट। इस प्रकार एक निश्चय स्थिति तो यह हुई, तो भगवान का नाम ही नहीं भगवान, ये नाम भगवान की भक्ति है, देखो क्या कितना स्पष्ट है। हाँ निश्चय बिल्कुल परमार्थ से वास्तविक में, और जो लिखा ना भगवान की भक्ति तो मुक्ति का कारण है, तो वहाँ ये भक्ति मुक्ति का कारण है ऐसा समझ लेना, उस भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं कहा है। देखो मैं एक बात कहता हूँ बहुत गंभीरता से विचार करना, कि यदि गुरुदेव श्री अपन को नहीं बताते तो सारी जिंदगी हमारी भगवान की भक्ति करते निकल जाती, क्या हम ये समझ भी पाते कि इसका नाम भगवान की भक्ति है। एक एक बात पर विचार करना गंभीरता से, समय सार पढ़ के भी, क्योंकि समय सार अकेले गुरुदेव ने नहीं पढ़ा है, सारी समाज आज पढ़ती है, तो कितने लोग इसको इस रूप में हैं। अब दूसरी बात है कि अभी भी अब तो गुरुदेव ने अपन को समझा दिया और अपन ने समझ लिया और अपने महिमा भी गाने लग गया कि हम नहीं समझ पाते। अब भी जब भक्ति की बात आती है तो हमारे दिमाग में सीधा क्या ख्याल आता है, सच बोलना हमारे नहीं, अभी भक्ति की बात आती है तो हमारे ध्यान में वही धमाधम ही आता है ख्याल में। अभी भी हम भक्ति शब्द मुंह से बोलते ही हमारे दिमाग में ये निश्चय भक्ति आती है क्या, मैं आपसे पूछता हूँ। इसे जान लेने के बाद में भी ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि इसके लिए वो लिखा था पिछले निरंतर भेदाभ्यास, ये निरंतर अभ्यास नहीं करोगे तो ऐसे ज्ञान का गेय तो बन जाएगी, लेकिन हम अंतर से उसको ही भक्ति मानते रहेंगे। क्यों कैसा वो फला डॉक्टर साहब तो भक्ति में आते ही नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते, नहीं बोलते मतलब जब भी हमारा भक्ति की भक्ति शब्द से ध्यान जाता है तो हमारा कहाँ लक्ष्य जाता है, मतलब बस वही जो आध घंटा का भक्ति का कार्यक्रम हम छपाते भी हैं तो सारा जगत भी जानता, हम भी उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं, 100 दफे में 1 दफे भी हमारे अर्थ में आता, जब व्याख्यान करते हो तभी आता है कृष्णचंद जी, बाकी के टाइम में तो भक्ति का मतलब वही होता है। तो और बताता हूँ मैं अभी पिछली गाथा में ही निकल गया है, मैं तो लिख रहा हूँ ना तो मुझे बहुत ख्याल आता है कि क्या लिखा कि केवली के स्तवन, केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन, देखो अब केवली गुणों का स्तवन वहां भी उसमें भी ये कहां निकलता, देखो पढ़ो इसमें ये गाथा में देख लो आप, इसमें देख पढ़ के बताता हूँ मैं आपको, मैंने अभी पढ़ा है केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन। देखो 29वीं गाथा, परमार्थ से सत्यार्थ ना हो केवली का स्तवन, केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन। अरे इसका हम क्या क्या समझेंगे, ये समझेंगे 29वीं गाथा जो अपने 31वीं पढ़ रहे, अब केवली गुणों का स्तवन को ए, 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 ए है उसका अर्थ, मूल में देख लो, मूल देख लो इसमें क्या है, तम निच्छेण जुज्जदी शरीर गुणा ही होती केवलिनो, केवली गुणो थुण दीजो सो तत्सम केवली थुण दी। अब केवली गुणों का हम क्या करेंगे, वही सर्वज्ञता वितरागता हेतुपदेशता उनके हिसाब से अनंत ज्ञान अनंत दस अनंत सुख अनंत वीर, यही तो बात करेंगे, उसे भी ध्यान जाता है कि नहीं जाता है मेरे कहने का मतलब है। लेकिन दो ही तुमको अभी 31वीं गाथा में आगे उनके दिमाग में तो ये था, बोल रहे थे ये लिख रहे थे ये, दिमाग में ये था यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम बत्तीस तीसवीं गारा तो नहर अम्मी बनने उदाहरण की है, 29 के बाद सीधी 31वीं आई है, 30वीं तो उदाहरण की है ना सर। नगर का वर्णन करने जैसे राजा का वर्णन नहीं होता है, ऐसे ही देह की स्थिति करने से केवल जी की स्थिति नहीं होती, वो तो उसी का उदाहरण है। और फिर वह स्थिति ऐसी आ गई, कुनकुन के दिमाग में तो वो बोलते हुए भी ये था, और हमारे दिमाग में वो बोलते हुए ये नहीं होता है, बस इतनी सी बात है। और आपको मालूम है अपना जो मंदिर है, इस मंदिर से मैं आप दर्शन करने जाते हैं तो बाएं हाथ के ऊपर बिल्कुल बीच में एक छंद लिखा है। मैंने 26 वर्ष पहले जब यहाँ आया था उसने मंदिर में सबसे पहले वो मंदिर में लिखवाना शुरू किया था, वो छंद मैंने लिखा है। कौन सा छंद लिखा है पढ़ा देखा आप लोगों ने? मुझे 26 वर्ष से याद है वो छंद कौन सा लिखा है। उसने लगा भगवान की भक्ति कैसे कहते हैं, मंदिर में सब भक्ति भक्ति वाले छंद है, तो उसमें मालूम क्या लिखा है, बनारसी दास का वो छंद है कि वो कहते हे भगवान तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय में विविध रूपों से बसती है। ये नाटक समय साथ है लो। अब वो कौन कौन से रूप हैं? तो कभी सोचन करता हूँ, कभी अध्ययन करता हूँ, कभी मनन करता हूँ, नाटक समय साथ नहीं है ना, कभी ये करता हूँ कभी ये करता हूँ, ऐसे विविध रूपों से मुझे मालूम नहीं इसमें नहीं, नहीं भी हो इसमें है 40 पेज नंबर तुमने करने क्या जाना चाहता 12 पेज 12 हो सकती है उधर ही करीब में देख 40 में कैसे मिलेगी। हाँ हाँ ए ए 12 ग्यारहवा पेज देखो, ग्यारहवा पेज देखो भैया। कब हूँ सुमति हुए कुमति को विनाश करे, कब हूँ विमल ज्योति अंतर जगती है, कब हूँ दया हुए चित्त करत दयाल रूप, कब हूँ सुलाल सा हुए लोचन लगती है, कब हूँ आरती हुए के प्रभु सन मुख आवे, कब हूँ सुभारती हुए बाहर भगती है, धरे दशा जैसी तवित करे रीति तैसी, ऐसी हृदय हमारे भगवंत की भगती है। मैंने भक्ति का स्वरूप को बहुत विस्तार दिया, कभी भगवान में तुम्हारे गुणों का गान करता हूँ, कभी मैं तुम्हारी लिखी हुई बातों को पढ़ता हूँ, कभी स्वाध्याय करता हूँ। ये भी भगवान की भक्ति का ही रूप है, जब हम मंदिर में भक्ति की बोले वो ही नहीं है, ये भगवान की कही हुई बात की हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी भगवान की भक्ति ही है क्या? यानी हम भगवान के गुणों का चिंतन करें, भगवान की बात का प्रचार करें, भगवान ने कहा तो आत्मा का अनुभव करें, जो भी हम धर्म का काम करते हैं, जिन्हें भगवान की वाणी में जो आया है और हम करते हैं जीवन में, वो सब भगवान की भक्ति का ही परिणाम है। ये भगवान की भक्ति नहीं है, वो तो कहते सच्ची भक्ति तो आत्मा का अनुभव ही है। जैसे अपन कह रहे पिताजी की सेवा, तो पिताजी की सेवा अकेला उनके पैर दबाना ही सेवा है, उनकी सारी उचित व्यवस्था करना, उनकी भावना की पूर्ति करना, वो चाहते हैं कि धर्म का प्रचार हो, धर्म में तुम खर्चा करो तो शक्ति के अनुसार उनका खर्चा, मान वो सब भगवान उनकी पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं है क्यों? वो हमारे सोहनलाल जी तो है नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ परोक्ष रूप में कि वो पहले प्रेस में सब काम संभालते थे, तो सब अपना काम फर्स्ट प्रेफरेंस से करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने काम बंद कर दिया, लड़के संभालने लग गए, तो लड़कों को अपना बिजनेस के हिसाब से सब बात होने लग गई, तो धीरे धीरे हमारा काम वहां से कम होने लग गया, होते होते हट गया। जब दोनों अखबारों का नंबर आया तो अखबार भी हट गए, तो अखबार में बहुत परेशानी सी भी होने लगी, तो उनके हृदय में बहुत दुख हुआ। एक दिन उन्होंने अपने घर में बैठ के बेटों को बुला करके उनसे ये कहा कि देखो भाई तुम और जो कुछ तुम्हें करना हो तो करो, लेकिन पंडित जी परेशान होते हैं और एक एक पैसों के चक्कर काटते फिरते हैं, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मैंने सारी जिंदगी में किया है ये काम, तुम यहाँ हर कीमत पर करना, कोई मुझे रेट मेट की बात नहीं है, तुम्हें समझ लो फ्री में करना, लेकिन तुम्हें यहाँ होना। तो उन लोगों ने बहुत आनाकानी करी, तो बहुत उदास रहने लगे। अब जाकर के वो फिर वो सब काम वहीं का उन्होंने बढ़िया से बढ़िया चालू कर दिया। अब वो भी कहते हैं, उनके लड़के भी कहते हैं कि अब बाबू जी खुश रहते हैं, तो हम तो उम्मीद है कि हमारी तो वसूली हो गई, बाबू जी प्रसन्न हैं क्या? ये कोई किताब निकलती है तो खुश हो गए, वहां डोलते हैं नाचते हैं, मतलब प्रसन्नता से होके, तो वो खुश रहते हैं तो हमारे 100 झंझट और खत्म हो गए, नहीं हमारे दिन भर चक्कर था, तो ये वो भगवान की भक्ति नहीं है। मैं उदाहरण के लिए बोलता हूं, किसी व्यक्ति की प्रशंसा के लिए नहीं बोलता हूं, भगवान की भक्ति नहीं। क्योंकि एक चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये संसार वाले पैसा ज्यादा देते नहीं है, प्रेस वाले पैसा ज्यादा मांगते हैं, इसलिए दूसरी जगह जाते हैं। मुझे वो सस्ता करता है, सस्ता करता है, सस्ते के चक्कर में दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह तकलीफ होती है 50 तरह की। क्यों बोलो? ये उम्मीद मिल जी की एक भावना है कि मैं ये काम करूं तो बच्चे उसके अनुकूल बरते, तो वो अकेले उम्मीद मिल जी की भक्ति नहीं है, वो जिनेंद्र की भी भक्ति है। समझ गया ना मेरे कहने का मतलब? तो भक्ति का रूप अकेला तो जय जयनाथ परम गुरु ही नहीं, भगवान की वाणी में जो जो आया है उसके किसी भी अंग में आप अपने को लगाते हैं तो भी भगवान की भक्ति। तो अपने आत्मा का ध्यान करो तो सबसे बढ़िया भक्ति, क्योंकि भगवान का आज्ञा तो यही है कि तुम अपने में समा जाओ। ये निश्चय भक्ति का स्वरूप है, ये कितना अद्भुत है। तब और अब बस वो प्रूफ निकाल निकाल के बताएंगे, देखो भगवान की भक्ति का फल मुक्त मोक्ष लिखा है, और आप कहते हो राग से बंद होता है, भक्ति से बंद होगा बंद। अरे भैया, हम तो राग रूप भक्ति से बंद कहते हैं, जहां मोक्ष लिखा है वहां तो भक्ति का अर्थ ए है, और जहां उसी भक्ति से मोक्ष लिखा हो तो परंपरा समझ लेना, फिर उपचार से समझ लेना। समझ लेना, जहां उसी को लिखा हो कहीं तो परंपरा और उपचार से समझ लेना। अब देखिए मैं आपसे बोलता हूं कि मुनियों के 6 गुण होते हैं ना, उनमें आता है समता, धर बंधन करे, नाना थुती बनाए, है ना। तो वो सब बाहुबली तो क्या क्या कर रहे थे, स्थिति बीच में स्थिति कर रहे होंगे, कभी आत्मा के ध्यान नहीं लगे रहे, तो वो जो 6 आवश्यक थे वे उनके थे के नहीं। समता धर बंधन करे और नाना थुती बनाए, अनेक स्थितियां बना बना के बंधन करो मन से प्रशंसा वचन से, नहीं एक शब्द भी नहीं मुंह से बोले उन्होंने, कोई भक्तामर स्तोत्र भी नहीं लिखा। क्यों? तो भगवान की भक्ति नाम का जो उनका अंग है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो तभी तो पूरा हुआ ना, क्योंकि ये आत्मा का अनुभव तो सबसे बड़ी भक्ति है, और नियम सार तो पूरा शास्त्र इसी पर बेस्ड है। प्रतिक्रमण भी आत्मा का अनुभव, प्रत्याख्यान भी आत्मा का अनुभव, भक्ति भी आत्मा का अनुभव, मैंने 28 ही मूल गुण, अकेले तुम आत्मा का अनुभव करो तो पल गए। क्यों होता है? नहीं होता है, सारे नियमों उपनियमों का आपको पालना करनी पड़ती है, और एक एक ऐसा महान कार्य होता है कि वो आपने किए तो सारे नियम उपनियम बिना पाले ही पल जाते हैं। क्यों? देखो आप ऐसे विचार करो कि आप ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, सुबह 10 बजे से 15 मिनट ज्यादा बने तो आपको टोका जाता है, 5 मिनट पहले आप ऑफिस से निकल नहीं सकते हैं। क्यों? और फिर आपको ऐसी छूट मिल जाए कि आप जब चाहें जब आए और जब चाहें जब नहीं आए, ये छूट मिल सकती है आपको? क्या नियम है इसके बोलो? कोई नियम नहीं, तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। तुम उसके प्रति इतने समर्पित हो जाओ कि तुम इतवार और शनिवार भी नहीं गिनो, तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं है। बोलो बाजी, दिन और रात तुम नहीं गिनो तो तुमसे कोई कहने वाला है कि तुम इतने बजे क्यों आए, इतने बजे तक नहीं आए? ये किन के लिए है बोलो? आप बताओ, देख लो। जो घर के मालिक के लिए छूट है ना, तो घर का मालिक 8 की जगह 16 घंटा काम करता है कि 4 घंटा करता है? हाँ, तब जाके उसके लिए छूट है, आप छूट ले लो। लेकिन वो सच्ची होनी चाहिए, नकली नहीं चलेगी, और वो उसके लिए कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके नियम नियम कोई काम नहीं आते हैं, सारे नियम एक तरफ लिखे रह जाते हैं। क्यों जाते ऐसे? वो 28 मूल गुणों 36 गुणों 25 गुण सब एक तरफ लिखे रह जाएंगे, और तू सच्चा मुनि रह जाएगा, और एक की तरफ भी ध्यान नहीं देना, तू अपने में चला जा, हो जाएगी। क्यों नहीं होगी बोला? सब फल गए नहीं फल गए? तो ये और नीचे गिरने चाहे, कुछ काम करना नहीं है, कोई जिम्मेवारी माथे पर लेना नहीं है, तो अब तू एक एक मिनट तेरा गिना जाएगा, क्योंकि तेरी जो मिनट जितना बैठ गया कोई काम है उसके बाद तो तेरी कुछ ड्यूटी है ही नहीं। क्या साहब ऐसा नियम है? अब आगे चलते हो, ऊपर तृता हुआ हो गया ना ज्ञान स्वभाव, इस प्रकार निश्चय स्थिति हुई। गे तो द्रव्येन्द्रियों भावेन्द्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का नाम है गे, गे गे के भेद की है, और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का हो गए जो पदार्थों का, यहां तक जो होगा ये गे माने द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय इंद्रियों के पदार्थों का, और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का, दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक सा होता था। जब भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया तब वह गेय गायक संकर दूर हुआ, ऐसा यहां जानना। वो गेय गायक संकर दोष को समझाने की बात की। अब भाव भावक संकर दोष दूर करके स्तुति करते हैं, यानी गेय गायक संकर के परिहार की हुई और भाव भावक संकर के परिहार की बात करेंगे। अब भाव क्या, भावक क्या, इस सब का विस्तार से होगा, सुनो।